जब मीडिया ने बहुत शोर किया कि ये फेक है, तो फिर DGISPR जो है मेजर जनरल इफ्तार बाबर, अब आर्मी चीफ खुद तो नहीं आते आने, वो DGISPR होते ही इसलिए है, उन्होंने कहा कि हमने जो उस लेटर के बारे में कहना था प्लीज कंसल्ट दैट हैंड आउट अगेन, जो उसमें लिखा हुआ है वो ही हमारा हैंड आउट है, वो ही हमारा मौकफ है,
जाहिर है।
अभी अभी फयाज हमें तीन मिनट का और ब्रेक लेना पड़ेगा, है ना, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक फॉर 3 मिनट्स, विल बी राइट बैक।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
बैंक अलबला पेश करता है रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये अकाउंट फौरी डिजिटली खुलवा सकते हैं। अभी www.bankalfala.com विजिट करें, आज ही अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं। इस डिजिटल अकाउंट में जब चाहे पैसे डालें और जब चाहे पैसे वापस ले जाएं और पाएं अपने मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके। ये बैंकिंग का नया अंदाज है और एक नए दौर का आगाज है। बैंक अलफला, रोशन मुस्तकबिल, डिजिटल पाकिस्तान।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com, QTL बिकॉज वी केयर।
इस हफ्ते इफ्तार रेडी करें बड़ी सेविंग्स के साथ। फूड बेसिक्स में आए और पाए 540 ml सीडर फिनिश या चिक पीस या बीन्स 4 for just $5, बोना चमीम खजूर सिर्फ $1.88 ईच। लो हो गई इफ्तार रेडी और लो हो गई सेविंग्स। फूड बेसिक्स, वेयर यू ऑलवेज गेट मोर फॉर लेस।
सेहत एक अनमोल नेमत है जो हर शख्स को हासिल नहीं। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अफराद तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए आपकी दुआओं और अध्यात के मुंतजर हैं। इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान की आबादी के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है, जो उनकी बुनियादी सेहत का ख्याल और हर मर्ज में उनकी मदद के लिए मौजूद है। ज़कात के फर्ज से खिदमत के फरीजे तक आप और इंडस साथ साथ।
इस रमजान सहरी हो या अफ्तारी, समोसे हो या कबाब, छोले हो, दही बड़े या फ्रूट चाट, रमजान की हर ग्रोसरी मिलेगी आपको रियल कनेडियन सुपर स्टोर में। मजीद मालूमात के लिए लॉग इन करें @realcanadiansuperstore.ca।
इस स्प्रिंग में आ गई है बैकयार्ड की बहार, क्योंकि लूज और रोना स्प्रिंग फेस्ट शुरू होने जा रहा है। तमाम गार्डनिंग एसेंशियल्स पर 30% तक डिस्काउंट और हर जुमेरात को एक नई डील का फायदा उठाएं। मार्कम, स्कारब्रो और ब्रैम्पटन के लूज और रोना स्टोर पर जाएं और $500 तक के इनाम जीतने का मौका पाएं। और आज ही लूज और रोना स्टोर पर जाएं और बहार अपने घर लाएं।
ट्रकिंग कंपनी वाली विंडसर शहर च अपना ट्रक टर्मिनल खोलने का सुनहरी मौका। 2024 बन जा रहे नवे विंडसर डिट्रॉयट ब्रिज तो 20 मिनट की दूरी ते हाईवे 401 दे बिल्कुल नेड़े ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाले लॉट अवेलेबल ने। तेजी नाल तरक्की कर रहे इस इलाके च आने वाले समय च काफी सारे वड्डे प्रोजेक्ट आ रहे ने ते हो सकदा तुहानू बाद च ट्रक टर्मिनल दी जोनिंग वाली एहो जिही जमीन वाजिब कीमतां ते ना मिले। मौके दा फायदा उठाओ ते हुणे कॉल करो चरणजीत बराड़ 6473008436 647-384-3686।
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड या स्प्रिंगडेल स्क्वायर शॉपिंग सेंटर या इटोबिको 1770 एल्बियन रोड या 9909 मार्कम रोड। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 905-455-1666। टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स।
जी सामने नाजरी, वेलकम बैक अगेन। एंड सब 6:03:57 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और फयाज वलाना मेरे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ शाजा जी भी यहाँ पर हैं। और शाजा जी, कौन सी बात चल रही थी? हमारे पास कुछ कॉलर्स भी हैं यहाँ पर, हम कॉलर्स
ले लेते हैं,
कॉलर्स को लेते हैं और जल्दी जल्दी करना है हमें, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नेक्स्ट कॉल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी, कौन बात कर रहे हैं सर?
नासिर।
नासिर भाई फरमाइए।
मजीद भाई, एक क्वेश्चन तो आपके लिए है, महसूस ना करना
जी।
आप बार बार कह रहे हैं कि जो बोले, देखिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों और शहबाज शरीफ पे आज फर्दर जुर्म आयद होनी थी
जी,
तो उनको क्या कहें हम, आप बता दें। अब दूसरा सवाल जो वलाना साहब से है वो ये है कि बाजवा साहब बगैर वहां नजर नहीं आए आपके बकौल के समथिंग इज रॉन्ग, तो क्या हमारी आर्मी अब, क्योंकि आर्मी जो है ना वो हमारी सिचुएशन के मुताबिक वहां पे पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रही है और रहना भी चाहिए, तो क्या मजबूरी बन गई आर्मी की कि शरीफ बादरान को उनको लाना पड़ा? थैंक यू।
पहले तो ये कि मैं हमेशा से मैंने ये कहा है कि जब भी आप रेडियो पे गुफ्तगू करें तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे दूसरे मुल्कों के लोग भी हमें सुन रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि हमारी अपनी गंदी लॉन्ड्री जो है हम सामने लेके आए और सबको बात करने का मौका मिल जाए इस पर। तो हम कोशिश ये करते हैं कि महजब तहजीब के दायरे में रह के, चाहे कोई भी लीडर हो हमारा, उसको तहजीब के दायरे में रह के बात करें हम, और अगर कोर्ट ये डिसाइड कर देती है और कोर्ट उनको जेल भिजवा देती है तो भाई वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। मौलाना साहब इनका सवाल का जवाब दे दें सर।
इन्होंने हमारी डिस्कशन को पसंद किया, लेकिन जो दूसरी वो बात कर रहे हैं ना कि आर्मी को अगर कुछ होगा तो वो बताएंगे, मेरे ख्याल में उन्हें कुछ नहीं है। जो मैं अपने तौर पर देख रहा हूं वो जरूर टेंशन में होंगे, टेंस होंगे कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में वो बैठे हुए थे खुद, जहां से ये एलामिया जारी हुआ है कि ये लेटर में ये चीज है और इसकी बेस पे अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के और उसे जो है डिमार्च किया जाए, वहां ये डिसाइड हुआ कुछ गलत था तो उसके एम्बेसडर को बुलाया जा रहा था, ये डिसीजन हुआ, वहां ये हुआ। आगे चल के इमरान की बात कोर्ट ने नहीं सुनी, ना कोर्ट ने, इमरान ने कहा भी, उनके वकील कहते रहे नईम बुखारी, इम्तियाज सिद्दीकी, अली जफर और एक और चौथे बाबर अवान, चारों वकील कहते रहे, खालिद जावेद अटॉर्नी जनरल भी, कि जो लेटर देख लें, कोर्ट ने लेटर नहीं देखा, अपोजिशन लीडर को कास्ट लेटर देख लें, उसने नहीं देखा, आर्मी चीफ ने देखा, इसके बावजूद क्या मसलहत थी कि उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट नहीं किया अगेंस्ट आर्मी? ये तो बाद में चीजें खुलेंगी और ये खुलती हैं, ये चीजें ढकी छुपी नहीं रहती, यही लोग रिटायर होने के बाद दो चार साल बाद किताबें लिखेंगे, और कोई लिखे ना लिखे, इमरान खान तो आपको पता है पहले कई लिख चुका है और किताबें पढ़ता भी बड़ा है और लिखता भी है, ये लिखेगा और उसके इर्द गिर्द जो लोग थे वो लिखेंगे, चीजें आएंगी सामने, ढकी छुपी नहीं रहती। लेकिन आज उनका उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में ना जाना इस बात की अलामत है कि वो इस सारा जो कुछ हुआ है, जैसे भी हुआ है, चाहे उसमें उनकी मंशा शामिल थी या नहीं थी, वो इससे कोई खुश नहीं है। जिस तरह आरिफ अलवी साहब हल्फ नहीं लेना चाहते थे और आरिफ अलवी साहब ने अपनी कमिटमेंट शो किया पीटीआई के साथ, हालांकि ये भी उन्होंने कोई अच्छा नहीं किया, अगर हम पुराना अपना स्टेटस
फील कर रहा, अगर उन्होंने कहा मैंने जब डॉक्टर को दिखाया
वो कंफर्ट फील नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हम पुरानी अपनी स्टेटस को की जो हमारी सिचुएशन है उसको देखें तो हम सारे यही कहते हैं कि उन्हें हल्फ लेना चाहिए था, जब ममनून हुसैन से ले सकते हैं, बाकी इमरान खान या जरदारी साहब ले सकते हैं, रफीक तारड़ से या दूसरे एक्स वाई जेड सारे एक दूसरे से लेते रहते हैं, बेनजीर इंसाफ खान से लेते रहते हैं लोग, प्रेसिडेंट तो पिछली गवर्नमेंट का होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं आ जाता है, वो फिर छह महीने साल जो उसके रहते हैं वो पूरे करके ही जाता है अगर खुद रिजाइन ना कर दे, तो ये ओथ टेकिंग इज नॉट अ बिग डील हो जाता है। लेकिन अगर इस सारी एक हफ्ते दस दिन की जो टेंस सिचुएशन थी उसमें गुजरते हुए, या आरिफ अलवी इमरान खान के 96 के वो हैं, पार्टी के साथ हैं, उनके साथ इमरान खान के साथ वो अपनी उसके साथ जो एक कमिटमेंट थी, पॉलिटिकल कमिटमेंट या पर्सनल फ्रेंडशिप जो भी निभाना चाहते थे, इस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट शहरी है और इतनी प्रेस्टिजियस सीट पे बैठा हुआ है, उसकी अपनी मर्जी, वो नहीं करना चाहता, ठीक है, उसका अल्टरनेट है, चेयरमैन सैनेट सादिक सदनानी से हो गए, उन्होंने हेल्प ले लिया, काम चल गया, लेकिन लोग नोट करते हैं कि कौन था और कौन नहीं था, उसकी वजह से ये होता है कि जो बंदा हेल्प ले रहा है वो अपने तौर पर अपने आप से सवाल करता है और दुनिया कहती है कि ये जो तुम काम कर रहे हो इसकी लिजिटिमेसी क्या है। इसी तरह जिस तरह चार दिन पहले चौधरी मुनीर के होटल में लाहौर में हमजा साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गए, अब वज़ीर-ए-आला पंजाब वो बन तो गए, लेकिन लोगों ने भी मजाक उड़ाया कि ये चौधरी मुनीर के होटल का वज़ीर-ए-आला है और चौधरी मुनीर वो साहब हैं जो समधी हैं मरियम नवाज के, ठीक है, तो वो चौधरी मुनीर के होटल का वज़ीर-ए-आला और चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना, दो दिन बाद वो बन जाएंगे और अल्लाह करे बने और काम करें और हमारे दोस्तों की उम्मीदों पे पूरे उतरे, लेकिन बड़ा फर्क है, लिजिटिमेसी इफेक्ट होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहां मौजूद होते, चीफ जस्टिस मौजूद होते और लोग मौजूद होते जिम्मेदार, फुल फ्लेज बाकायदा वो एक सेरेमोनियल प्रेस्टिजियस किस्म की सेरेमनी होती तो अच्छा था, लेकिन ये हैपहैज़र्डली जल्दी जल्दी में की गई है, कुछ लोग पहुंचे हैं नहीं पहुंचे, पता नहीं मियां शहबाज शरीफ साहब को क्या जल्दी थी कि पता नहीं को मुझे वापस ना ले ले चीफ प्राइम मिनिस्टरशिप, हालांकि ऐसे नहीं होता, जब आपने एक अक्सरियत शो कर दी यू आर देयर फॉर नेक्स्ट सिक्स मंथ, अगर इससे पहले कुछ और नहीं हो जाता तो
नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो नेक्स्ट कॉल जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी. वालेकुम सलाम सर. रिजवान बात करो सर. जो दिल्ली साफ करने वाला है वे या नहीं? बाकी जो तीन चार पिछले जज जा रहे हैं काजी फायदी का, वह सारे ऐसी माइंड सेट अप देने, सारे नॉन लीगल सपोर्ट करते हैं. तो जिस तरह मीडिया भी उधर भी पर्दा उठे, सियासतदार भी नंगे हुए हैं. सॉरी तुसे मैं गलत लफ्ज यूज कर गया. सीधा सरदारती निजाम वाल जा रहा काम, क्योंकि सारे गंदे हो गए हैं. उन्होंने आना वे चुका होते हूं सारे, वह भी सारे कट्ठे गए हैं इको थान. उन्होंने कहा मौका नहीं मिलता तब्दीली आनी हुई तो जमुड़िया साड़ी वेख लो त्रै चार रुपये ला सारे बिक जाते हैं. हर पिछले सत्तर पचहत्तर साल तो यह ही हो रहा है. उन्हें पर निजाम चेंज करके वेखना चाहिए. मुझे लगता है निजाम चेंज ही हो रहा नहीं कि इमरान खान सब नजर आ रहा थे अगली उन्हीं आ रहे थे साल बाद कोई होया तो आ ही काम नहीं इन्होंने को.
जी जनाब, अब लोगों के जज्बात देखें. और एक और मैं आपको बता दूं माजिद भाई और शाजिया बहन, मैं आपको एक और खबर दे दूं कि पिछले तीन साल जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो हमें अपने टेलीविजन चैनल पे, मैं आपको पता है एक और चैनल पे प्रोग्राम करता था, तो वो जब हम प्रोग्राम करते थे वहां तो वहां हमें मुस्लिम लीग का बंदा नहीं मिलता था बुला के सामने बिठा के कोई बात करने के लिए. एक कामरान मलिक हमने कहीं से दरियाफ्त किया और अच्छा बोलता है बंदा, तो कामरान मलिक के अलावा यहाँ मुस्लिम लीग नून का मुझे कोई बंदा नहीं मिलता था. और आज यहाँ जीटीए में मुस्लिम लीग वाले जश्न मना रहे हैं शहबाज शरीफ की कामयाबी का. मुझे कई दोस्तों ने फोन किया जी वो हमने सुना है मुस्लिम लीग का जश्न हो रहा है, बताएं कहाँ हो रहा है, हमें किसी मुस्लिम लीग के बंदे का नंबर दें. तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई बहुत शुक्रिया आप बरामद हो गए हैं. ये शहबाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने का कमाल है कि आप लोग जो है अब जीटीए से भी मुस्लिम लीग नून बरामद हो गई है. तो अब आपको मुस्लिम लीग नून के बंदे यहाँ जलसे भी होंगे, मीटिंग्स भी होंगी, इफ्तारियां भी होंगी, अब रौनकें लगेंगी मुस्लिम लीग नून की भी यहाँ. अच्छी बात है, मैं खुश हूँ.
अच्छा नेक्स्ट कॉल जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. हेलो नेक्स्ट कॉल जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम.
अस्सलाम वालेकुम
जी. कौन बात कर रहे हैं?
मैं सैयद बात कर रहा हूँ
जी. सैयद भाई फरमाइए.
सर ये इनसे एक बात सवाल पूछना था कि तकरीबन 21 साल हो गए इधर अकाउंट में पैसे नहीं आते, जमा नहीं होते, तो ये पाकिस्तान में कोई चपड़ासी वाली वाली नौकरी वो कहाँ से मिलेगी जो मखसूस चपड़ासी के पास? वो जरा मुझे एड्रेस बता दे.
हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए वो.
सर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे को पैसा कोई नहीं.
हम सारे भी गरीब है.
अरबा रुपीज चाहिए.
हम सबको चाहिए. हाँ जी दसो जी व्यास भाई.
हाय हाय ये दुख जो है ना, ये कोई एक बंदे का दुख नहीं है, हर बंदे का दुख है ये. तो भाई आपके लिए आपको इस सिलसिले में आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा और वहाँ इस काम के जो माहिर हमारे लीडरान हैं उनसे रابطہ करना पड़ेगा
और फिर चपड़ासी भी बनना पड़ेगा.
हमारे पास इसका कोई सलूशन नहीं है भाई, यहाँ तो वही मजदूरी है आप करते रहें जो कर रहे हैं.
नेक्स्ट कॉल जी. अस्सलाम वालेकुम. हेलो
जी. अस्सलाम वालेकुम.
कौन बात कर रहे हैं सर?
जी मैं मियाँ अर्ज कर रहा हूँ. क्या हाल है आप? ठीक है
मियाँ साहब? आप ही को तो ढूंढ रहे हैं हम.
मियाँ साहब को मुबारकबाद दें जी.
मियाँ साहब को मुबारक हो जी. फरमाइए मियाँ साहब. सॉरी
आपने मेरी कॉल आंसर की. आपका अच्छा छोड़ जा रहा है, आपको इसके जल्दी कड़ा में रखे. मगर हकीकत ये है कि बहुत करीब से मैं देखा है, मैं सच कह रहा हूँ, ये एक ही इन पे नुकता फिक्स होता है, ये पर्सनली ये चोर है बस.
बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी. मियाँ साहब, मियाँ साहब को कह रहे तो हम क्या कर सकते हैं बीच में बैठ के.
हम बाहर के लोग हैं, हमें बाहर रहना चाहिए.
हम बाहर वाले लोग,
बाहर वाले हमें बाहर रहना चाहिए भाई.
हम आप लोगों के झगड़े में बीच में नहीं पड़ना चाहते. मियाँ साहब, मियाँ साहब को कह गए जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी. वालेकुम सलाम
जी. कौन बात कर रहे हैं?
जी सर बिलाल बोल रहा हूँ
जी. बिलाल
मियाँ साहब ने जो उदे लगाए थे आज उनका फल खा रहे हैं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? उन्होंने जितने डीआईजी आईजी ये सब इनके वाल भर्ती किए थे पहले, आज स्टेप बाय स्टेप उनकी औलादे ऊपर आ रही है. हाँ। उन्होंने अपना जो लगाया वो खाना नहीं है उनका.
बिल्कुल सही है,
बहुत
सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है.
ओके
ये माजिद भाई, माजिद भाई हमारे यहाँ एक और मसला है, एक और मसला है हमारे यहाँ. ये जो जजेस लगाने वाला काम है इसका भी कुछ करना पड़ेगा पाकिस्तान के, अगर जी, अगर कुछ हम बेहतरी चाहते हैं. क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है जो एसी और डीसी लगते हैं, इसी तरह आपका वहाँ फॉरेन सर्विस ग्रुप है जो जो हमारे एम्बेसडर्स आते हैं बाहर, और अकाउंट्स ग्रुप है, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप है, मिलिट्री कंटोनमेंट ग्रुप है,
सीएसएस जो ग्रुप आते हैं, सीएसएस
करके जो आते हैं 17 ग्रेड से स्टार्ट करते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते सीखते 22वें ग्रेड तक फेडरल सेक्रेटरी बनते हैं या एम्बेसडर कहीं बनते हैं। जजेस जो हैं वो किसी ने लाहौर कराची इस्लामाबाद बड़े शहर में चार दिन वकालत कर ली, किसी पोलिटिकल पार्टी से अटैच हो गया और वहां से उनकी खुशामद करते करते वो अचानक एक दिन पता चलता है वो हाईकोर्ट का जज हो गया जी, और वहां से वो चार छह साल बाद सीनियर होता है सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद फिर वो आगे से साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी निकलता है। साकिब निसार साहब जब तक लाहौर में थे, तो वो मियां फैमिली के फैसिलिटेटर थे, उसके बाद उन्हें हाईकोर्ट में भिजवा दिया मियां बिरादरान की मेहरबानी से, वहां चले गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी किसी इश्यू पे उनके साथ नाराजगी हो गई और फिर वो उनके अगेंस्ट हो गए। तो ये पहल बुनियादी तौर पर बात ही गलत है, हम जजेस इस तरह लगाते क्यों हैं, हम क्यों नहीं कोई जुडिशियल सर्विसेज ग्रुप बना लेते कि 17 ग्रेड में जिस तरह बाकी सिविल सर्विस अकेडमी से ट्रेनिंग लेके आते हैं 17 से आप वहां सिविल जज वहां लगाएं और वही सिविल जज तरक्की करते करते एडिशनल और डिस्ट्रिक्ट जज और फिर वहां से हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट आए, तो वो शायद कुछ हमें उनसे गिले शिकवे कम होंगे, शायद वो इतने इजी नहीं होंगे, हर कोई उन्हें खरीद नहीं सकेगा फिर
जी। राइट,
इसीलिए मैंने शुरू से ही कहा था साहब के ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो चलाती है मुल्क को और ब्यूरोक्रेसी ने जो भी किया है उस ब्यूरोक्रेसी की वजह से हुआ ये। अभी तक तो बड़े अच्छे कॉल्स आ रहे थे फयाज बिलाना साहब आपके पास, अब जरा एक चैलेंजिंग कॉल भी ले लूं मैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी जी हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए।
फयाज भाई तो पीटीआई की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि पीटीआई ने पौने चार साल में दूध शहद की नहरें बहा दी, इतने कर्दे लिए और कह रहे हैं इतने डैम बना दे, वो कुएं डैम जो है ना मुझे दिखाए तो सही, वो सिंध में बने, केपीके में बने, बलोचिस्तान में भी बने, पंजाब में बने।
ये क्वेश्चन आपने बीबी से और जरदारी से और ये आपने
नहीं, 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 वो,
से
वो हम करते हैं, बिल्कुल हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल।
लाड़काना में तो लोगों के तन पे कपड़ा और पैर में जूती नहीं है सर, कभी जाके विजिट किया ना?
जी जी वो पंजाब में भी ऐसा ही है, ऐसा
नहीं है,
उठाके नहीं देता
पंजाब, पंजाब का कोई गाँव ऐसा नहीं।
डोंट बी पर्सनल, डोंट बी पर्सनल, मैं उनसे बात कर रहा हूँ।
हाँ, एक
डोंट बी पर्सनल,
हाँ
क्वेश्चन ये,
हाँ क्वेश्चन
मेरा क्वेश्चन ये है कि मोहतरमा के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस आया था, लीडर ये होता है और ये तारीफें करते नहीं थकते थे कि फलाम वजीर आजम और यूरोप और उधर की मिसालें, तो ये क्या मुगल आजम थे कि नो कॉन्फिडेंस के लिए पार्लियामेंट में नहीं आए? यार आप उसी पार्लियामानी सिस्टम के जरिए प्राइम मिनिस्टर बने, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बने, आपने इतने जो 161 सीटों के बावजूद आपने रिजल्ट नहीं दी, अभी तक तो एक वोट भी अपोजिशन ने इनकी पार्टी के नहीं यूज किया, इसका मतलब है कि अपोजिशन का तादाद ज्यादा था, इसके इतिहादी इनके इनसे नाला थे, इनके अपने लोग नाला हैं सर, इस तरह से मुल्क नहीं चलते।
बिल्कुल ठीक।
और ये जो कह रहे हैं ना अमेरिका अमेरिका अमेरिका, बेटी खुद की अमेरिका, दो ब्रिटिश बच्चे, यार क्या बात करते हो, फिर उर्दू सिखाने
बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया
जी। जरदारी साहब इनका नाम,
जरदारी साहब
जी, जरदारी साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और सुनते रहते हैं, आप पुराने लिसनर हैं, अच्छी बात है। आपने जो क्वेश्चन किया बिल्कुल सही किया है, आप यकीन माने मैं पीटीआई की हमायत में नहीं बोल रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं, जो इस वक्त फैक्ट्स मौजूद हैं। डैम्स की बात मैंने नहीं की, आप दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, मैंने नहीं की, आपने याद यानी कराई, तो वहां वाकई डैम्स पे काम शुरू हो चुका है, मजीद तफसीलात गूगल करके देख लीजिएगा कि कहां हो चुका है। अब आप बात करते हैं इसकी बेनजीर भुट्टो की, कि वहां नो कॉन्फिडेंस उसके अगेंस्ट आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन आप जरा करेक्ट कर लें और मेरे सुनने वाले भी करेक्ट कर लें, उसी वक्त छांगा मांगा का लफ्ज इजाद हुआ था। हुआ क्या था छांगा मांगा में, कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एमएनए मियां साहब ने उठाए वो छांगा मांगा ले गए और जो बीबी ने उठाए वो सवात ले गई। तो सवात और छांगा मांगा एक दूसरे के आमने सामने थे, दोनों ने बंदे उठाए थे और एक दूसरे के बंदे उठाए थे, और वहां उन्होंने यरगमाल बना के उन्हें रखा हुआ था, उन्हें खरीदा हुआ था, जैसे भी रखा हुआ था फोर्सफुली रखा हुआ था कि कहीं निकल ना जाए हाथ से। अब आगे मैं बताता हूं हुआ क्या था, फिर नो कॉन्फिडेंस नाकाम कैसे हुई थी। चार बंदे थे, मैं नाम भी आपको बता देता हूं उनमें, एक अहमद आलम मनवर थे, एक रईस शब्बीर थे, और दो नबी दो ना एक गुलाम अहमद मानिका थे, एक और नाम मुझे अभी याद आ जाता है। चार एमएनए थे इस्लामाबाद में, जब वहां ये इसके गवाह जो हैं वो मियां जाहिद सरफराज हैं, जो उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे।
यस,
इस्लामाबाद में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की उसमें मियां साहब ने जब देखा कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का सरबराह तो मैं हूं नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन अगर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई तो तो इस्लामाबाद में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ आईजीआई के गुलाम मुस्तफा जतोई थे, तो उन्होंने कहा कि अगर कामयाब हो गई तो प्राइम मिनिस्टर तो गुलाम मुस्तफा जतोई बनेंगे, तो कल तक ये आईजीआई का सारा खर्चा मैं कर रहा हूँ, सारा टीम मैं लेके चल रहा हूँ, तो ये तो फिर आइंदा वो कंटिन्यू करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो मैं क्यों उन्हें बनने दूं, और मैं तो पंजाब में वज़ीर आला हूं। आखिरी टाइम पे मियां साहब ने, मियां जाहिद सरफराज बताते हैं कि वहां खड़े हुए थे ये चार बंदे, बीबी से मैं बात कर रहा, उसे गुलाम मुस्तफा जदोई से मैं कोई बात कर रहा था, चार बंदे चलते चलते आए, मियां नवाज शरीफ भी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि हम इतने दिन से यहां बैठे हुए हैं, हम तंग पड़े हुए हैं, पता नहीं ये वो, तो हमें प्लीज घर जाने दें, हमने दवाई शवाई लेनी है, बच्चों को मिलकर तो हम आ जाएंगे। तो मियां साहब ने इससे पहले कि गुलाम मुस्तफा जतोई कुछ कहते, जो प्राइम मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार थे जिनके एक्चुअली वो वोटर थे, इससे पहले कि वो कुछ कहते, मियां साहब ने कहा ठीक है जाओ तुसी, उन्हें मियां साहब ने उन चारों बंदों को जाने दिया। और वो मियां जाहिद सरफराज बता रहे हैं कि मैं उससे पहले बता रहा था गुलाम मुस्तफा जतोई को कि कुछ बंदे हमारे इस ग्रुप में कच्चे हैं, उन पर नजर रखें, और इन्हीं चार बंदों की मैं बात करने लगा था, और वो चार बंदों को मियां साहब ने जाने दिया। अब जब आईजीआई का सदर कह रहा है कि जाओ, तो वो कहता है मेरी क्या जरूरत थी, मैं कहता ना जाओ, कहता है वो गए, कोई 10-15 मिनट बाद सैफ गेम्स हो रही थी लियाकत जिम्नाजियम इस्लामाबाद में, और वहां बीबी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के तौर पर बैठी हुई थी स्टेज पे, और वहां टेलीविजन पे पीटीवी पे जब वो खबरें चली और वो उसकी लाइव कवरेज चली सैफ गेम्स की, तो दो बीबी के राइट पे बैठे हुए थे, दो लेफ्ट पे बैठे हुए थे, अहमद आलम अनवर, गुलाम अहमद मनिका, रईस शबीर और एक और बंदा मुझे नाम नहीं याद आ, ये चारों वहां बैठे। जब टीवी पे हमने देखे तो हमने कहा जी ये मियां साहब आपने गंवा दी अपने हाथ से, ये तो वो चले गए, वो तो बीबी के पास बैठे हुए, इसका मतलब वो गए। वो इस तरह नाकाम हुई थी, खरीदो फरोख्त से नाकाम हुई थी, किसी उसूली उसके तहत नाकाम नहीं हुई थी। प्लीज हिस्ट्री को करेक्ट कर लें जी। अब आप यहां आएंगे तो आप कहेंगे कि मैं इमरान खान की तारीफ कर रहा हूं। इमरान खान इंतहाई जिद्दी आदमी है, इंतहाई नरगसियत पसंद है, खुद पसंद आदमी है, गर्दन उसकी हर वक्त अकड़ी रहती है, गलत आदमी है इंतहाई, लेकिन इस सारे अमल के दौरान उसने कोई बंदा खरीदो फरोख्त में वो नहीं पड़ा। उसने कहा जिस इतिहादी ने मेरे साथ रहना है रहे, जिसने नहीं रहना ना रहे। आज भी इमरान खान के अपने सारे साथी उसके लोग यही कह रहे थे कि इस्तीफे ना दो। मुझसे भी कल परसों किसी ने रेडियो टीवी वाले ने पूछा, मैंने कहा उसे इस्तीफे नहीं देना चाहिए, असेंबली में बैठ के मुकाबला करना चाहिए, लेकिन ये वो बंदा है जिसने पब्लिक की नब्ज रीड कर ली है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है, गलत रीड किया है या सही रीड किया है। लेकिन आपको याद होगा भुट्टो ने अपनी किताब में जब लिखा था इफ आई एसिनेटेड, उसमें भुट्टो ने कहा था कि अगर मुझे लोगों ने इस वक्त जो नब्ज पढ़ ली और लोग रोड पे निकल आते तो शायद वो भुट्टो को बचा लेते। अगर उस वक्त 77 में लोग सड़कों पे निकलते और इतनी ही तादाद में निकलते जितनी निकलना चाहिए था, तो आज हम रो ना रहे होते भुट्टो के इतने अजीम नुकसान को कि इतना बड़ा लीडर हमसे हमारे हाथों से चला गया। आज इमरान खान ने वो वाला रिस्क लिया है। अब अगर लोग निकलते हैं तो इमरान खान बच जाएगा, लोग नहीं निकलते तो इमरान खान विद इन डेज मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी स्टोरी फिनिश हो जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं उसकी अपनी हठधर्मी की वजह से, जिद की वजह से, लेकिन ये जिद उसकी अगेंस्ट स्टेटस को है। स्टेटस को ये कहता था कि असेंबली में बैठो, उन्हें अंदर उनकी टांगे खींचो, उनको लेजिस्लेशन ना करने दो, शहबाज शरीफ तकरीर करने के लिए उठे तो आगे से वोटिंग करो, उनको वहां जो है वो फाड़ो, बजट के पेपर आए तो वो फाड़ो, वो स्टेटस को था। और इमरान खान कभी वॉकआउट कर जाओ, उनके कोरम पे नजर रखो कि कोरम नहीं पूरा हो रहा, घंटियां बजाते रहे। इमरान खान ने कहा ये सब यूजलेस है, ये सब फजूल है, ये स्टेटस को है। अगर स्टेटस को का आप साथ देना चाहते हैं तो वहां जाएं। स्टेटस को के अगेंस्ट क्या था, वो जो कल पब्लिक बाहर निकली। अब उसने वो पब्लिक वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है, खुदा जाने सही किया है या गलत किया है, लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं भाई, हमने जो कुछ हो रहा है हमने वही आपको बताना है। हम नहीं कह सकते कि दूध शहद की नहरें सिंध में बह रही हैं या पंजाब में बह रही हैं, कहां कितनी नहरें बह रही हैं लोगों को नजर आ रही हैं। मुझसे पूछेंगे तो पीटीआई वाले भी शर्मिंदा होंगे, पीपल्स पार्टी वाले भी शर्मिंदा होंगे, नून लीग वाले भी शर्मिंदा होंगे, लेकिन अगर हम इनके कारनामे डिस्कस करने यहां बैठ जाएं तो यकीन माने हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाए। हम तो बात कर रहे हैं कि आज असेंबली में क्या हुआ, परसों क्या हुआ था और कल आने वाले कल में क्या हो सकता है। हम करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, करंट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं।
बिल्कुल ठीक।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, 3 मिनट्स में एक सवाल भी है, जवाब भी है, और बाकी कॉलर्स को मैं माजरत चाहता हूं कि उनसे मैं उनकी कॉल्स नहीं ले सकूंगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नहीं है, बस हमारा टाइम यहीं पर खत्म को पहुंचता है। बाकी के कॉलर्स जो हैं भाई, इंशाल्लाह ताला हम फयाज बलाला को दोबारा लेके आएंगे यहां पर, एंड शाजा जी तो होती है हमारे साथ। फयाज, आई थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इट वाज अ वंडरफुल टाइम।
लेकिन जी हमारा क्या मुकाबला है फयाज भाई के साथ, जो हिस्ट्री, जो बैकग्राउंड, जो चीजें इनको पता है, हमें तो पता ही नहीं है वो चीजें। जाहिर है हम तो इनको उस्ताद मानते हैं और हम तो इनसे सीखते हैं, तो जो कुछ ये बता सकते हैं वो तो कम लोग बता सकते हैं.
100%
बहुत शुक्रिया. मैंने कहा शायद आप क्वेश्चन पूछने लगे हैं तो जाते जाते मैं आपको बताता जाऊं कि एक राइटर हैं, ब्राजीलियन राइटर हैं, जानती होंगी शादिया, इन्होंने पढ़ा होगा पोलो कोएलो. पोलो ने बुक जो लिखी थी अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट जो है 35 मिलियन बुक्स उसकी बिकी थी, इतना बड़ा बेस्ट सेलर वो राइटर था. तो उसकी एक सेंग है, उसने कहा था गो हैड टेक योर रिस्क एंड एंजॉय योर फ्रीडम. इमरान खान ने शायद ये रूट लिया अब. वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए
और वो किताब भी पढ़ने जैसी है, वो अल्केमिस्ट जो उसकी लिखी हुई है.
बिल्कुल, 35 मिलियन बुक्स बिकी हैं उसकी. 35 मिलियन मीन 3.5 करोड़ किताबें. तो वो इमरान खान ने रिस्क लिया है और वो अब अपनी फ्रीडम एंजॉय करेगा. पब्लिक उसके साथ आती है तो बच जाएगा और पब्लिक को भी किसी नतीजे पे हम पहुंच जाएंगे, इस हम स्टेटस को से निकल जाएंगे, शायद हालात में बेहतरी हो जाएगी. ये जो ग्रुप्स आ रहे हैं जा रहे हैं, अब देखिएगा कि अगले 4-6 जलसों के बाद इमरान खान के पीछे पार्टियां लग जाएंगी कि टिकट हमें दो. और शायद इस दफा वो टिकट इस तरह, ये इलेक्टेबल्स वो सारे तजर्बे कर चुका है, वो इलेक्टेबल्स वाली रेस से निकल चुका है. अब वो उसने टोटली वो रिस्क फैक्टर ले लिया है और बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है. उसकी जान को भी खतरा है और सही खतरा है, क्योंकि ये जो इतने बड़े गैंगस्टर हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई बंदा उनकी आंखों के सामने इतना पॉपुलर हो जाए और कौम उसके पीछे आंखें बंद करके चल पड़े. हालांकि कौम को पता हो, जिस तरह जरदारी साहब को पता है कि वो जिद्दी है, वो खुद पसंद आदमी है, वो लोगों से हाथ नहीं मिलाता, वो बैठता नहीं है, किसी को चाय के साथ बिस्किट नहीं देता, सादा सा आदमी है, सीधी सीधी उसकी जिंदगी है. उसमें बहुत सारी खराबियां होंगी, 1000 खराबियां होंगी, लेकिन पब्लिक को उसने अपना बयानियां बेच लिया है भाई. उसने पब्लिक को जगा दिया है कौमी गैरत के नाम पे. लोग महंगाई को भूल चुके हैं, चीनी के रेट को भूल चुके हैं, पेट्रोल को भूल चुके हैं, आटे को भूल चुके हैं. क्यों निकल रहे हैं लोग सड़कों पे? अगर महंगाई वाकई जरदारी साहब की बात ठीक हो या बाकी मेरे मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी वाले दोस्तों की बातें ठीक हो, तो लोग सड़कों पे क्यों निकलें? किसी बंदे को नहीं निकलना चाहिए. इमरान खान खुद पागल हो जाए सड़कों पे निकले, कोई बंदा उसकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो. लेकिन अभी तो वो निकला ही नहीं, अभी तो उसने परसों पहला जलसा करना है. तो फिर इन दोस्तों को जो आज तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रहे, फिर ये कहां क्या करेंगे? फिर ये इन्हें किस तरह बर्दाश्त होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि उसने पोलो कोएलो के मुताबिक अपने आप को रिस्क फैक्टर में डाल के वो अपनी फ्रीडम एंजॉय करने जा रहा है और वो लोगों को भी कौमी गैरत का सबक दे रहा है. और हमारी कौम खाने के लिए कुछ है या नहीं, गैरत हमारी, उस पे हम जो है बिल्कुल खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं.
फयाज, थैंक यू सो मच अगेन एंड बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ताला फिर एक आध दिन के अंदर फिर बात होगी, उस वक्त तक और नई नई चीजें.
हम हाथ जोड़ के पहले माफी आपसे मांग ले, हम आपको टाइम देते नहीं है, बस कहते हैं आ जाओ हमारे पास जो है.
इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच.
जो बात आप कर सकते हैं वो कोई कर भी नहीं सकता है, किसी के पास इतना बैकग्राउंड नहीं है, इतनी पीछे जो है ना वो जो चिड़िया है ना, खास आपके पास है जो सिर्फ आप ही के पास है.
नहीं, चिड़िया के अलावा एक और होता है ना, जब आप बात करते हैं ना, सीधी बात करते हैं, साफ बात करते हैं, तो आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है कि अभी आपको लोग काले करके आपको आपके अगेंस्ट भी बोलेंगे. तो मैंने तो जिंदगी में ये बहुत कुछ सहा है. आपको पता है 1992 में मुझे पहला एज ए अप्रेंटिस रिपोर्टर, मैं अभी एक अखबार में अप्रेंटिस रिपोर्टर था, तो मुझे पहला जो लीगल नोटिस मिला था उस वक्त चीफ अपना नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड थे, चौधरी निसार अली खान पेट्रोलियम के मिनिस्टर थे. पहला लीगल नोटिस इन्होंने 1992 में, अभी मैंने सिर्फ 4-5 महीने काम शुरू किया था, पहला लीगल नोटिस मुझे 5 करोड़ रुपए का इन्होंने भेजा था चौधरी निसार साहब ने. और जब वो आया था तो उस वक्त हारून रशीद साहब हमारे साथ रिपोर्टिंग रूम में वैसे बैठे हुए थे, आए हुए थे, दूसरे अखबार में काम करते थे. तो जब वो नायब कासद ने आके दिया वो लेटर, तो मैंने खोला तो वो ऑफिशियल लीगल नोटिस था. तो हारून रशीद साहब ने दूर से पूछा, हाँ बेटा क्या है? मैंने कहा जी लीगल नोटिस है. कहते हैं कितने का है? मैंने कहा 5 करोड़ का है. तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो, स्टार्ट तुम्हारा अच्छा है, तुम बहुत आगे जाओगे. तो हम तो इन चीजों को, ये थ्रेट हो गए, लोगों का गुस्सा हो गया, गालियां हो गई, लीगल नोटिसेज हो गए, कोर्ट कचहरी हो गई, तो इसे तो हम एक आजाद समझते हैं कि अगर हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो अगले बंदे को अच्छी या बुरी लग रही है, तो इसलिए वो बंदा रिस्पॉन्ड बैक कर रहा है ना. हाँ, बदतमीजी मैं कभी भी नहीं करूंगा और आपके ऑडियंस से, आपके फोन कॉलर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बदतमीजी ना करें. मैं नहीं करता, आप भी ना करें. इश्यूज पे बात करें, इश्यूज पे बात करेंगे, खुल के करेंगे. यकीन माने, मेरा ना नवाज शरीफ रिश्तेदार है, ना आसिफ जरदारी से कोई रिश्तेदारी है, और इमरान खान से तो बिल्कुल ही नहीं रिश्तेदारी कोई. तो जब हमारे रिश्तेदार नहीं है, मेरे रिश्तेदार आप लोग हैं. अगर यहाँ जीटीए में, टोरंटो में, अगर किसी तकरीब में आप मुझे मिल जाएंगे, आप मुझे हंस के हाथ मिलाएंगे, तो मैं भी आपसे मिला लूंगा. शायद कभी बैठ के 4 मिनट गप लगा लेंगे, शायद किसी के एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे हम. उन तीनों ने नहीं आना, ना मेरी हेल्प करने, ना आपकी हेल्प करने. इसलिए प्लीज खुश रहें और चीजों को हकायक की नजर से देखा करें. जाति प्यार, उनसियत, एक उनके साथ एक जो कल्ट होता है, प्लीज वो अपनी जगह अच्छी बात है, होना चाहिए कोई ना कोई आपका, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप फैक्ट्स को इग्नोर करके ऑलवेज एक लाइन पे
एट द स्टेक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड विल बी टॉकिंग टू यू वेरी शॉर्टली। शाजी जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड सामने नाजरीन, अब और किसी चीज का टाइम नहीं है, बस सिर्फ अल्लाह हाफिज का टाइम है मेरे पास, क्योंकि 6:30 बजे हमारा स्पेशल रमजान का सेगमेंट आता है इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो की जानिब से, मैं उधर लिए चलूंगा आपको, और 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक डॉक्टर फरहत हाशमी हमारे साथ होंगी, और कल हमारा एक मस्जिद इब्राहिम का जो फंड रेजिंग है वो कल 5 बजे होगा इसी रेडियो पे, तो हमारा साथ जरूर दीजिएगा आप। उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
6478724900। आइए अब सुनते हैं रमजान मुबारक का खुसूसी प्रोग्राम। इसके लिए हमें तआवुन दिया है इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो ने। इस प्रोग्राम को आप रेडियो के अलावा हमारे चैनल ई आवाज टीवी और फेसबुक ई आवाज पर लाइव देख सकते हैं।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. May the peace, the mercy, and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Alhamdulillah, we find ourselves in this blessed month of Ramadan. I wanted to begin by thanking the Islamic Foundation of Toronto and Brother Javed Ali Khan, Qari Yunus Ingar, and the entire team for inviting me today and for this opportunity to speak. And I wanted to thank all of you for tuning in this evening and listening. The topic, my name is Ilyas Alim, and the topic that I was asked to speak about is the value and importance of education in one's life. So certainly a big topic. So I wanted to begin with, just a little narrative. You know, I still remember the first time that I walked into the Islamic Foundation of Toronto. And we had actually recently moved from the U.S. back to Toronto, Canada. I was in grade 10 and grade 11. Having just moved, there was a lot going on in my life personally, leaving high school and moving. But more importantly, I was also in the middle of my Hifzul Qur'an, so memorization of the Qur'an. And so I walked into the Islamic Foundation. I still remember going upstairs and, it was in between prayers. And I knocked on the office and I was basically looking for somebody that would be able to help me with memorizing the Qur'an. Someone that would be able to listen to me, make the corrections and provide guidance, mentorship. And that's when I first met Qari Yunus. And mashallah, at that time, and still even now, he was very young and energetic and very passionate about the Qur'an. And so that's how it started. And every evening, I would come to the and the evening madrasa was just starting at that time. It was just a work in progress. He would listen to me regularly. And then after that, the evening classes started. And then Maulana Farid was my teacher. Maulana Irfan, Sheikh Hussein Patel. Many people might remember some of the older, mashallah, generation of teachers and the dedication that they had. And for me, that's where it personally started, that connection with the Islamic Foundation of Toronto. And alhamdulillah, through the dedication of, my teachers and the passion that they had for teaching, I still remember calling Maulana Farid on the weekends. I would call him after Fajr. to listen to me, and he was always willing and excited and passionate to listen to me, to make the corrections and spend extra hours. And this type of dedication is something that you really don't see in a lot of institutions, where there's a personal investment in the students, in the team, in the overall growth of the community. And alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I was blessed to have this institution as a beacon of knowledge and inspiration as I was growing up. And so, throughout this talk, I'm going to mention a few different numbers here. And I also want to mention that when we're supporting the Islamic Foundation, don't do it for the sake of supporting the Islamic Foundation. We're not supporting, the committees or the boards or any specific organization. What we're doing is we're supporting the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, the cause of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the light that he brought into the community where he was, sallallahu alaihi wasallam, and instilling that light into the community here. And really what we're doing is we're helping ourselves by supporting the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And so the numbers that we are mentioning here, so there's a phone number, 647-468-3040. Another number, 416-988-1339. And of course, you can also donate at www.islamicfoundation.ca. That was almost 20 years ago when I had first walked into the Islamic Foundation of Toronto. But this year, something really special happened. Something that I would not have imagined, or ever even dreamed of happening. And this actually started about 13 years ago, so more than a decade ago. I remember sitting in a boardroom in the Islamic Foundation of Toronto with Qadi Yunus and a small group of volunteers. And he was talking, and there was mention of starting a Qiraatul Qur'an competition, something that would encourage the young memorizers or students of Qur'an to improve their tajweed, to reconnect to the Qur'an in a friendly environment. And again, it was just a small group of volunteers, but Qadi Yunus was very passionate about this. And starting something like, not only a local competition, but something that would be North America wide or even international. Obviously there were, at that time, there were financial concerns, there was advertising concerns, there were political concerns, but still he was dedicated on this idea. And alhamdulillah, from that year forward, so that year was 13 years ago, I was able to participate in the Qiraatul Qur'an competition that first year. But this year, alhamdulillah, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, something really special happened. And that really affected and touched me personally, but also, our family. And that is that my son, Bilal, at the age of 7 years old, competed in that competition this year, the same competition. So alhamdulillah, and this is really from the barakah and the sincerity of our teachers and of the committees, the volunteers, their dedication and their sincerity to the cause of Allah subhanahu wa ta'ala. And we ask that Allah subhanahu wa ta'ala accepts this effort. And so alhamdulillah, this year my son, participated in that same competition that I was a part of at the very beginning. And this was very touching for me personally, because it shows that this, this continuity of knowledge and of Islam and of Quran, and this barakah across generations. So again, I want to thank Brother Javed Ali Khan, the volunteers at the Islamic Foundation. And I want to say that we should really be supporting this foundation, not for the sake of supporting any specific mosque or community or organization, but for ourselves, for supporting the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And again, you can donate online at www.islamicfoundation.ca. And also using the phone numbers, which are really available 24/7. Mashallah, the volunteers have made themselves available around the clock. You know, obviously it's a difficult time for everybody, but this is where we can really show our love for Allah subhanahu wa ta'ala. The phone numbers again are 647-468-3040, and another number, 416-988-1339. So I wanted to spend a little bit of time now focusing on the topic at hand, which is the importance of education, especially in this society. And first and foremost, the most important aspect of education is to know God, is to know Allah subhanahu wa ta'ala, and to know what He requires of us. Because without this knowledge, then every other knowledge is, you know, futile. And part of knowing Allah and knowing what is required of us is the understanding that our time is limited. And if we don't busy ourselves in good, then shaitan will busy us in evil. We all know the hadith where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take benefit benefit from five things before five things. One, your youth before old age. Number two, your health before sickness. Number three, your wealth before poverty. Number four, your free time before you're preoccupied. And number five, your life before death. Again, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, take benefit of five before five. Youth before old age, health before sickness, wealth before poverty, free time before preoccupation, and life before death. And subhanAllah, if you look at this hadith, four of these things deal with youth. Four of these things are luxuries or benefits that we have, or most of us have in our youth, that, you know, as we get older, that luxury is gone. And that is youth before old age, health before sickness, free time, and life before death. So how do we take advantage or benefit from these things? How do we benefit from the things where the Prophet ﷺ is saying take benefit from these things? It's by utilizing and using the time and the moments that we have for what really benefits us in this world and the next. And so, again, I wanted to make an appeal to support the foundation, the Islamic Foundation of Toronto, not just, again, to be able to support a specific community or a group of people, the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we donate for ourselves. The benefit is for ourselves, and we all know the hadith that have been taught to us by our teachers and our scholars, but the benefit always comes back to us. So the numbers are 647-468-3040. Again, another number, 416-988-1339. Or you can donate very easily at www.islamicfoundation.ca. So after completing my HIFS at the Islamic Foundation of Toronto, in the evening madrasa, with the dedicated staff and teachers that were there, I was faced with a dilemma. I really wanted to go and study the deen and the sacred sciences. I wanted to study with the ulama. I wanted to go to South Africa or, you know, the UK. But unfortunately, given the situation, this wasn't really facilitated for me. And so I met with several of my close teachers, my mentors, my advisors, my parents, who have all been very important in guiding and giving advice. And I still remember one of my teachers saying that the ultimate goal of life for all of us is to live a life that's pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala, to know what He requires of us and to live a life that is pleasing to Him. So Allah subhanahu wa ta'ala is the goal. The goal is not a specific, textbook or a specific degree or a specific job. These are all means to the ultimate goal, which is Allah subhanahu wa ta'ala. And there's many paths to achieve the goal, to achieve the goal of getting to Allah subhanahu wa ta'ala. Sacred knowledge is one of them. Da'wah is one of them. Calling people to Allah service or khidmat to people, for people is one of them. Supporting the poor, the needy is one of them. There are many paths to Allah subhanahu wa ta'ala. And so as long as one is sincere in taking at least one of those paths for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, the destination is really one and the same. And so if you look at the Islamic Foundation of Toronto, it's really, you know, and I've traveled far and wide across the world. I currently live in the U.S., but the Islamic Foundation is really an amazing model of how a single organization can support so many different facets of society, so many different, you know, elements and so many different aspects of pleasing Allah subhanahu wa ta'ala as the ultimate goal. And so really we should take this opportunity where it's really, you know, a buy one get, you know, infinite with Allah's mercy free. We should use this opportunity to support, I'm saying it's not to support not a specific community or committee or organization, but to really help ourselves. And so alhamdulillah, with that guidance and mentorship, following my, you know, my HIFS at the Islamic Foundation of Toronto, I went on to pursue a medical school, you know, and against all odds, alhamdulillah, I was accepted into medical school at McMaster University. And I went on to do my residency in orthopedic surgery at the University of Toronto, followed by a master's in health research methodology, and then fellowship in spinal surgery. So alhamdulillah, currently I work at the University of Michigan as an academic spine surgeon, and involved with teaching residents, medical students, and of course, you know, performing surgery and serving the people and the community here in Michigan. Alhamdulillah, along every step of the way, Allah subhanahu wa ta'ala, through His infinite mercy and generosity, has opened up many paths and many openings. And so the topic that I was really asked to speak about was the value of education and the importance of education. And what I'll say is that, you know, the value of education is in this society is very clear, not only for an individual in their own life, because it gives a person clarity with regards to this world and the next. But also in society, and in a society where, you know, the reputation of Muslims is often under attack, and our credibility is questioned, you know, Muslims don't have a voice in the community, a strong education, and this is really directed for the youth, you know, a strong education gives a person a voice in the community and credibility so that they can ultimately affect change. And of course, it allows one to earn a halal income and support one's family and one's community. And so what I would urge all of us to do here is really to heed the advice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And especially this is, you know, targeting the youth. We need to utilize our time, our resources, our energy, and our opportunities here, because Allah subhanahu wa ta'ala will ask us about the time that we have. And time is really the most valuable asset that we have. It's the most valuable thing. You know, there was a quote that, you know, 2 hours of time is more valuable than 2 bricks of gold, because you can't buy 2 hours of time with 2 bricks of gold. So, I mean, point being is that the time passes us by. There's a quote here by Sheikh Muhammad al-Shaybani, and I think it really kind of captures the essence of the topic tonight. And he says, learn, for learning is an adornment for one who possesses it, a virtue and a prelude to every praiseworthy action. Profit each day by increasing your learning and swimming in the seas of beneficial knowledge. Profit each day by increasing your learning and swimming in the seas of beneficial knowledge. And really, this is an opportunity for us to do that. I wanted to end with the hadith by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's a little bit of a different take on it, but I think it really just goes to show the importance of utilizing all the opportunities that we have. Where the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that Allah subhanahu wa ta'ala demands excellence and ihsan in everything that we do. So whatever we do, whether we, you know, make our bed in the morning, whether we, fix a car, whether we are cooking dinner, whether we are studying for an exam, whether we are reciting Quran, whether we are dealing with our parents, whether we are talking to our teachers, whether we are, whatever we're doing with our character, our manners, our adab, that we do it to the best of our ability, that we do it with excellence. And this was always the hallmark of the Muslims and the Muslim community. If you look at the Islamic Foundation of Toronto, one thing that I've always appreciated about them is that they do things, they do things with excellence, with ihsan. And you can see this excellence as soon as you walk in. You can see it in the cleanliness of the prayer spaces. You can see it in the, in the painting, in the decor, in the calligraphy, in the artwork, in the way the events are run, in the organization, in everything that they do. And so anything that is done, inshallah, with this intention will have barakah and khair in it. By supporting the Islamic Foundation, we are not supporting a specific committee or group or geographic community. What we're doing is that we're supporting the cause of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet sallallahu alaihi wasallam in Toronto, in Canada, and really a role model for the rest of the world. Very easy to donate. The two numbers that I mentioned, 647-468-3040. Another number, 416-988-1339. You can donate very easily online, which is the way, I would guess most people are doing it these days, at www.islamicfoundation.ca. This is our opportunity to use this time and to benefit, to show and prove to Allah subhanahu wa ta'ala that we are dedicated to His cause. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you. May He accept our prayers, our fasting. May He accept our sacrifices. And may He accept the efforts that we have give for His sake. May He forgive all of us, forgive our parents, forgive our teachers, ultimately allow us all to reunite on the Day of Judgment with the Prophet sallallahu alaihi wasallam under the shade. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yusuf Badat here, the Imam at the Islamic Foundation of Toronto. Alhamdulillah, we are in the blessed month of Ramadan. We make dua and we supplicate to the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala that He continue to bless us with the best of acceptance. May He accept our fasting, our prayers, our du'as. May Allah subhanahu wa ta'ala relieve the entire ummah of difficulties and challenges. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the best of peace and prosperity. As many of you brothers and sisters know, the Islamic Foundation of Toronto is a masjid and a full-fledged organization that is located in the east end of Toronto, one of the largest masajid in Toronto and Canada as well. And a number of services that many of you have benefited from or know about, and we continue to serve the community. It's great to see that the masajid and the places of worship are now opened post-COVID-19 situation of the lockdowns. And despite some of the challenging circumstances around the pandemic, we are able to still congregate, mashallah. We are able to have the iftar at the masajid, and we're able to continue with the programs and the acts of worship of Salatul Isha, Taraweeh, and the various prayers and our congregations. May Allah subhanahu wa ta'ala continue to shower His mercy upon all of us and our families and the entire ummah in general. The Islamic Foundation of Toronto is committed to serve. We have a number of programs. We start with some reminders about the regular prayers. We have hundreds of congregants that attend the prayers every single day from Fajr all the way to Isha. And we also have janaza services, the funeral services. We have nikah services, marriage services for anybody who is getting married. We also have the educational classes and services as well. We have the regular madrasa where hundreds of children every single day are learning the Quran, are learning the basics of Islam. We also have a specific program called the Sunday School where children in the community are coming on the Sunday if they're unable to come during the week. And they are again learning the basics of Islam, reciting the Quran about the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, and the beautiful stories surrounding the various prophets and how we can all become better and greater Muslims and citizens of our beautiful societies and our countries. We also have at the Islamic Foundation of Toronto outreach programs where we connect with different communities and societies, in particular the twinning program where we are twinned with a few synagogues, and we have interfaith sessions where the Jewish community comes to the masjid, and that sometimes we are also going to the synagogue. And what we are doing is we are doing interfaith sessions. We're learning about each other's faiths and practices and bringing one another closer to each other. And other communities as well, the Christian community, the temples, the various different diverse communities. And our masjid is open for these groups as well to visit the mosque and have tours as well. Similarly, we have an entire program here at the Islamic Foundation of Toronto of giving charity to cover and help the vulnerable in the community and the society, both locally as well as internationally as well. For example, we have a hot soup kitchen every single Saturday. Non-Muslims and Muslims come together to have a fresh cooked meal. These meals are also delivered to homes and shelters in the community. And some of these shelters are specific to the youth. Others are specific to women and children. All of this is all possible through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and through your contributions. And it goes without saying that the best time to give charity is in the blessed month of Ramadan. And this is why I come to you on behalf of the Islamic Foundation of Toronto, and I make this earnest appeal to myself and every one of you that is watching or listening to this program, that we all contribute to the Islamic Foundation of Toronto to maintain these services, to upkeep these services, and continue educating our children and the community, to continue supporting the vulnerable, the poor in our societies, and similarly to continue all the programming for the interfaith and the outreach and all the services that takes place here at the Islamic Foundation of Toronto. Please give generously in the month of Ramadan. The Prophet Muhammad, peace and blessings upon him's generosity, is described in the month of Ramadan, wherein the Sahaba, the companions say, كَانَ أَجْوَدُ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ, that the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, was the most generous from amongst us. But in the month of Ramadan, his generosity was just outstanding. كَالرِّيحِ الْمُرْسِلَةِ, it was like a very strong wind in intensity, just like we feel the strength and the might of that strong wind. Everybody around the Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, felt and experienced the generosity in the month of Ramadan to help others, to help the services of the community. So please do contribute. Visit islamicfoundation.ca and give in large and small amounts. Allah subhanahu wa ta'ala will bless you and your families, will relieve you of your difficulties and your problems. The Prophet Muhammad, peace and blessings upon him, says, مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ, that anyone who establishes and maintains the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala will establish for them palaces in paradise. We all want to attain paradise, and what better moment and what better place to spend than in the month of Ramadan for the cause of the services of the masajid. We specifically also have arrangements for channeling your zakat. When it comes to the services of the masjid, it is only lillah donations that are accepted, which are used to pay for the bills regarding the masjid and the services of the masjid. But when it comes to helping the poor and the needy, your zakah is channeled towards helping these poor families pay for their rent, pay for their food and their basic necessities. We are supporting many newcomers as well, and through your sadaqah and your zakat, we are able to assist these families who depend on the contributions that are given to them from the masjid. So an earnest appeal. This is the month of Ramadan. Yadul ulya khayrun min al yadi sufla. The giving hand is far better than the receiving hand. Be those who give. The Prophet ﷺ, he told Bilal radiallahu ta'ala anhu, anfiq ya Bilal. Spend, O Bilal, from the treasures that Allah subhanahu wa ta'ala has given you. And Allah subhanahu wa ta'ala will spend upon you. When we help the masjid and we help the house of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah helps our homes and our families. When we help the poor and the needy, Allah subhanahu wa ta'ala